हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 11। इस अत्यंत ही अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओमज्ञान्तिमुरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रीति तन्मयतया करवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससोऽनुमुपया मे गुरुं मुनीना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। वञ्चाकल्पतरु भयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं क्लेशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्या प्रभुनित्यनन्दा श्रीयद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। सूत जी सोनिक आदि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर चुके हैं, और कल हमने अत्यंत ही सुंदर कि हमें ये मनुष्य जीवन में जो चार पुरुषार्थ करने के लिए कहा गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनके विषय में पढ़ा। धर्म का वास्तविक लक्ष्य है अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त करना, अर्थ का वास्तविक लक्ष्य है धर्म करना, और कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता। वास्तव में काम का इच्छा करने का वास्तविक लक्ष्य ये नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों को ही प्रसन्न करते रहे। इंद्रियों को प्रसन्न किया भी नहीं जा सकता। यदि कोई ये सोचता है कि अपनी वांछित वस्तुओं को प्राप्त करके मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर दूंगा, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि कितना भी अमाउंट दिया जाए, कितना भी इंद्रियों को तृप्त करने की सुविधाएं उनको दे दी जाए, इंद्रियां कभी तृप्त हो भी नहीं सकती। जीवाना जिसको खाने की इच्छा है वो कभी भी ये नहीं भूलेगा कि बस अब बहुत हो गया, अब मेरी इच्छा खत्म हो गई खाने की, तो कुछ भी खिलाओ, कितना भी दो, कितना भी दो, और थोड़ी टाइम के बाद वापस से उसकी तृष्णा जाग उठती है। जिसको छूने की इच्छा है वो कभी स्पर्श से संतुष्ट इंद्रिया नहीं होती। जिसको देखने की इच्छा है तो दर्शन से कभी संतुष्टि नहीं होती, और जिसको सुनने की इच्छा है, भौतिक जो भी सुनते रहते हैं सदैव, तो वो सदैव बोलते रहते हैं कि भाई हमें कुछ नया सुनाओ, मतलब तृप्ति नहीं होगी इंद्रियों की कभी। तो लाभो जीवे तयावता कि सिर्फ जी जाए मनुष्य, बस इतने काम कितना करना है, इच्छा इतनी कि यह जीवन टिक जाए, जिंदा रह जाए। और जीना किस लिए है, तो अत्यंत ही सुंदर सूत गोस्वामी ने बताया कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीना क्यों है? तत्व की जिज्ञासा करने के लिए। जीने का एक ही मकसद है कि आप तत्व को जानो। और जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, जिंदा रहने की और कोई वजह नहीं है। जिंदा रहने का, मनुष्य के जीने का केवल एकमात्र लक्ष्य है कि वो तत्व को जान सके। तो बहुत ही सुंदर आज हम ये पढ़ेंगे कि वास्तव में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में अंतिम लाइन में क्या कहा था कि वास्तव में वो परम सत्य कौन है, वो तत्व कौन है, उसकी व्याख्या आगे श्लोक में कही जाएगी। तो आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं वो तत्व को जानने वाला, तत्व के विषय में है कि वास्तविक में वो कौन सा तत्व है जिसकी जिज्ञासा करने के लिए भगवान ने हमारे इस मनुष्य योनि का या फिर हम जीव का इस संसार में आने का जो मकसद है वो तत्व जिज्ञासा है। और वो तत्व क्या है, वो उसकी जिज्ञासा क्या है, वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, जिसके लिए हमें इस संसार में आना पड़ा है। तो बहुत ही सुंदर आज का श्लोक है। मैं हृदय से चाहूंगी कि मैं एक एक शब्द को गुरु और गौरंग की कृपा से आप सबको बताने का प्रयास करूंगी। आप सब बहुत ही, आप सबसे हाथ जोड़कर चरण छू कर ये ना रिक्वेस्ट है, ये विनती है कि आप शास्त्र में देख कर पढ़ा करो। क्योंकि शास्त्र में यदि आप देखोगे तो शब्द को जब हम देखते हैं ना श्लोक के, तब हमें उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वरना तो ऐसा लगता है कि ये बोले ही जा रही है, बंद क्यों नहीं कर रही, चुप क्यों नहीं कर रही। लेकिन शास्त्र में जब हम देखते हैं तो हम एक एक शब्द को इतना, क्योंकि ये मैं कोई कथा नहीं कर रही हूँ, मैं कोई अपनी वाहवा करवाने के लिए या पब्लिसिटी करवाने के लिए श्लोक्स नहीं पढ़ रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि हम सीखें। जैसे सीख रहे हैं हम, तो एक एक शब्द को हमें समझना है, सीखना है, ताकि हम इसको आगे फैला सकें। अगर हम खुद सिर्फ लोग कथा करने और सुनने का एक ही पर्पज होता है, बस टाइम जो है वो भगवान की भक्ति में लगे, ये टाइम में, बाकी बाद में उसे क्या समझ में आया क्या नहीं आया, कोई उससे पूछे तो उस श्लोक के विषय में वो कुछ नहीं बता सकता। आज तक हमने बहुत सारे, अभी आपने भागवतम कितनी दफा पढ़ा है, और ये जो श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं वो कम से कम 50 बार हर हर डिवोटी ने पढ़ा होगा, और एक एक शब्द का मैं वारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि किसी को पता नहीं है कि जो शब्द लिखे हुए हैं ये ज्ञानम अद्वयम क्या है इसका मतलब। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बस पढ़ के छोड़ दें, ऐसे ही नहीं पढ़ना है, हमको सीखना है, तो उसके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा और थोड़ा इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, यदि आपको समय का अभाव है तो आप भले आधा आधा करके सुनिए, लेकिन जब तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते, जब तक है ना श्लोक के एक एक शब्द को नहीं समझ सकते, तब तक मैं समय को कम नहीं कर सकती। रियली सॉरी, कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूच्य कहते हैं वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। 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 वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते। शब्दों का अर्थ देखिए, वदन्ति, वदन्ति का मतलब होता है कहते हैं। कौन कहते हैं? तत्, वह जो तत्त्वविदः यानी विद्वान लोग। अब भगवान ने हमें ये संसार में जन्म दिया है किसके लिए? तत्व जिज्ञासा के लिए। और जिन्होंने तत्व जिज्ञासा कंप्लीट कर ली है, जो तत्वविदा हो गए हैं, अब जिन्होंने तत्व को जान लिया है, वो वदन्ति, वो कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्वविदस तत्त्वम, उस परम सत्य के विषय में, तत्त्वम यानी परम सत्य को यत कहते हैं कि वो कैसा है? ज्ञानम, उसका ज्ञान जो है वो अद्वयम, अद्वयम है वो, एक अद्वयम। द्वा किसको बोलते हैं? द्वा बोलते हैं दो को, और अद्वयम का मतलब होता है सिर्फ एक, जिसके जैसा दो नहीं हो सकते। अर्थात जो तत्वज्ञानी हैं, जो तत्व को जानते हैं, उन्होंने बताया है जो अद्वयी ज्ञान है, यज ज्ञानम अद्वयम, वह ज्ञान जो अद्वयी है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, अद्वयी ज्ञान और तत्व है, और वो एक ही है, दो हो ही नहीं सकते। दो हो नहीं सकते मतलब एक ही है, उस एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अद्वय का मतलब होता है केवल एक, उसके जैसा ना कोई है, ना कोई था, और ना ही कोई बन सकता है। वो एक ही भगवान है, वो वन मैन शो, सिर्फ एक ही भगवान है। ज्ञानम यानी पूर्ण ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि उसको ज्ञान प्राप्त करना है। यज ज्ञानम अव्ययम, देखो अब इसके ना जो तत्व है जिसकी हमें जिज्ञासा करनी है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है जीव से तत्व जिज्ञासा, और जिसने तत्व जिज्ञासा कर ली है वही हमें बताएगा कि तत्व तत्व क्या है जिसको हमें जानना है। तो वदन्ति तत्त्व विदस्तत्वम, जो जिन्होंने तत्व को जान लिया है वो उसकी पहले दो क्वालिटीज बता रहे हैं कि वो ज्ञानम है यज ज्ञानम, वो परम सत्य है, वो ज्ञान से परिपूर्ण है और अद्वैय है। अद्वैय माना उसके जैसा और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अब ये दो क्वालिटी समझ में आ गई, लेकिन वो कौन है, वो व्यक्ति कौन है जो ज्ञान नहीं है और उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता, जो अकेला इकलौता है, अद्वयम है, वो कौन है? तो सब अपनी अपनी मता अनुसार बताते हैं, है ना। सब कोई अपने अपने मति के अनुसार बताते हैं कि भाई ये भगवान है, वो भगवान है, ये भगवान है, क्योंकि ये सब कोई अपने ही हिसाब से बता देना कि वो अद्वैय ज्ञान है, है ना। लेकिन कौन क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। महाभारत में बताया गया कि जब आप एक पॉइंट पर नहीं पहुंचो तो आपको शास्त्र और साधु की सलाह लेनी चाहिए। जो शास्त्र है, जो साधु है, जो महाजनों, ये महाभारत में कहा गया कि जो धर्म का या जो परम सत्य, जो परम तत्व का जो विज्ञान है वो बहुत गूढ़ है, इसको समझना बहुत कठिन है। तो क्योंकि आपका जीवन इसी तत्व पर टिका हुआ है, जिसको आपने पकड़ा उधर ही आप जाओगे। भगवान कहते हैं 9.25 में, यांति देव पृता देवान पितृन यांति पृतुवता भूतानि यांति भूतेज्याः यांति मध्याजिनोऽपि माम। आपकी मर्जी है, आपको किसी ने पकड़ा नहीं है, आपको किसी को भगवान आपको बाई फोर्स बलात् आपको अपनी भक्ति करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। भगवान ने आपको टोटल फ्रीडम दिया है, लेकिन आपको जब ये मनुष्य जन्म मिला है तो आपको ये सोचना है कि वो तत्व ज्ञान क्या है, तो उसको जानने के लिए क्या करना है। तो शास्त्र कहता है तर्को अप्रतिष्ठो स्मृति विभिन्ना। इस संसार में तर्क का कोई अंत नहीं। यदि आप बहस करने बैठोगे और यहाँ पर 50 लोग को बिठा दोगे तो वो सब अपनी अपनी राय बताएंगे। तर्क अप्रतिष्ठो, तर्क का कोई अंत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि शास्त्र में एक ही प्रमाण हो, शास्त्र भी अनेक है। हमारे पास वेदों और शास्त्रों में ऐसी सी भाषाएं लिखी हुई हैं कि साधारण प्राणी की मति ऐसे घूम जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहा स्मृतिम विभिन्ना, जो शास्त्र में भी लिखा हुआ है वो एक ही बात नहीं है, कभी किस तरफ जा रहा है, कभी कौन से, क्योंकि शास्त्र जो है वो व्यक्ति के अनुसार, के संसार में इस तरह के व्यक्ति होंगे तो उनके अनुसार उसको सारा लिखा हुआ मिलता है ज्ञान। तो जो आपको आपकी मति के अनुसार लगता है आप उसी को पकड़ते हो। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, तर्को अप्रतिष्ठो स्मृति विभिन्ना। संसार में तर्क का कोई अंत नहीं और स्मृतियां भी बहुत ज्यादा है। तो क्या करना है, चलो किसी मुनि से जो मनन करते हैं उनसे पूछ लेते हैं। तो शास्त्र कहते हैं नहीं नहीं, नसा मुनि यस्य मतान भिन्ना। इतने सारे मुनिगण हैं, और मुनि का क्या मतलब है पता है, मुनि का मतलब श्रीमद् भगवद गीता में श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छा मुनि का वर्णन करते हैं कि मुनि का मतलब होता है जिसका अपना मनन, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो कि ये है। और अगर उस मुनि का पॉइंट ऑफ व्यू किसी और मुनि से मैच करता होगा ना तो वो सही वाला मुनि नहीं। यानी कि मुनि का मतलब ये कि आप कंटिन्यूस मनन करते रहो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, उसका एक अलग विचारधारा होनी चाहिए। तो जितने नसा मुनियस्य मतान भिन्ना, जितने भी मुनि हैं उनका एक अलग अलग मत है। फिर तो बस गए, क्या करना है? तो एक साधारण प्राणी क्या करे, कैसे समझे उस भगवान को? तो शास्त्र कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। धर्मस्य तत्त्वम् नीतम् बुहाया महाजनो येन गता सुपन्था। यदि वास्तव में आप धर्म के तत्व को जानना चाहते हो तो फिर इस सब में उलझने की आवश्यकता नहीं है। क्या करो, महाजनो येन गता सुपन्था, जिस रास्ते पर महाजन चलते हैं, जिस रास्ते पर जो महाजन है, जो वास्तविक भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, और आप इस निर्णय पे पहुंचे हो कि अभी महाजन कौन है ना, मेन पॉइंट ऑफ व्यू आता है। महा का मतलब होता है महान, जन का मतलब होता है व्यक्ति, है है ना, महाजन। तो महाजन कौन है? अब अगर भगवान एक व्यक्ति बनकर संसार में आ जाए तो क्या उनसे महान कोई हो सकता है? वैसे शास्त्र में बताया जाता है तो संसार के प्रथम जीव ब्रह्मा जी, उनसे महान कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि और उनसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने स्वयं उनको हृदय में ज्ञान दिया। हमने पहले श्लोक में पढ़ा था ना श्रीमद् भागवतम में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव हैं उनको स्वयं साक्षात भगवान ने ज्ञान दिया। और क्या कहा ब्रह्मा जी ने? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। जो सच्चिद आनंद ज्ञानमय है, सच्चित आनंद है, वो केवल भगवान है। यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है यज ज्ञानम अद्वयम, तो वो सारी क्वालिटीज वो केवल ईश्वर परमः कृष्ण, वही परम कंट्रोलर है, वही ज्ञानमय है, वही परम तत्व है जो कि कृष्ण है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि इतनी विकृत हो गई है कि वो इस प्रमाण को नहीं मानता, ब्रह्मा जी की बात को नहीं मानता, इसलिए भगवान को स्वयं इस संसार में मानव शरीर लेकर भक्त के रूप में आना पड़ा। और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताते हुए भगवान के विषय में, जो यज ज्ञानम अद्वयम की बात कर रहे हैं उसके विषय में बताया, कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना। यदि अद्वैत ज्ञान, जैसे हमारा शब्द क्या है यज ज्ञानम अद्वयम, तो अद्वैत ज्ञान तत्व क्या है? सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना, जो वास्तव में ब्रज नंदन ब्रज किशोर भगवान श्री कृष्ण है, वही अद्वैत ज्ञान तत्व है। परंतु मनुष्य इतना मूर्ख है कि भगवान की बात नहीं मानता, वो सोचता है कि संसार में जितने भी ज्ञानी हैं उनका एक अलग अलग मत है, और वो बोलते वो ज्यादा ज्ञानी है ना हम उसकी बात माने, वो ज्यादा ज्ञानी है हम उसकी बात मानते हैं। तो आज मैं आपकी भेंट एक परम ज्ञानी के साथ करवाती हूँ, उनका नाम है मधुसूदन सरस्वती गोस्वामी। मधुसूदन सरस्वती गोस्वामी बहुत बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। पहले वो मायावादी थे, परंतु जब वृंदावन गए और भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थल और लीलाओं के विषय में सुना तो भगवान के भक्त बन गए। उन्होंने इतने इतने तत्व विचार लिखे थे कि बड़े बड़े राजा भी यदि कोई डिसीजन लेते थे, कोई भी जब भी ज्ञानियों की सभा बिठाई जाती थी तो सबसे प्रथम स्थान इनको दिया जाता था, मधुसूदन सरस्वती गोस्वामी को। एक बार अकबर बादशाह के खजांची डोलरमल उनका नाम था, उन्होंने विद्वानों की एक सभा बुलवाई और मधुसूदन सरस्वती को भी बुलवाया और उनसे पूछा कि बताइए, मतलब बहुत बहुत अलग अलग बातें पूछी थी। अब विद्वानों की सभा थी तो अकबर बादशाह ने बहुत सारे विद्वान मिलाए थे और जो भी विद्वान मतलब बहस करने आता था उनको ये मधुसूदन सरस्वती हरा देते थे। उस समय जितने भी ज्ञानी थे, जितने भी विद्वान थे, उन्होंने एक स्वर में ये कहा कि इस संसार में यदि कोई ज्ञानी है, यदि कोई तत्व को जानने वाला है, तो वो मधुसूदन सरस्वती है। संसार में जितना ज्ञान है, वास्तव में हम सब जानते हैं वो ज्ञान कहाँ से आता है? सरस्वती जी की कृपा से प्राप्त होता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धिर् बुद्धिमत्तामस्मि, परंतु ये जो ज्ञान का डिपार्टमेंट है ना, वो भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी को सौंपा हुआ है। तो सभी विद्वानों ने स्वीकार किया कि यदि कोई ज्ञानी है और यदि इस संसार में कोई सरस्वती महारानी के ज्ञान को समझ सकता है तो वो एक ही है। और शास्त्र और उन्होंने ये बताया, वेति पारम सरस्वत्या मधुसूदन सरस्वती, यानी सरस्वती महारानी के ज्ञान के विषय में यदि कोई समझ सकता है तो वो केवल मधुसूदन सरस्वती है। और मधुसूदन सरस्वती जी की ज्ञान का कोई अंत नहीं है। इस संसार में उनको उनके ज्ञान का कोई भी पार नहीं ला सकता, इसलिए उन्होंने कहा मधुसूदन सरस्वत्या पारम वेति सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती के हृदय में या बुद्धि में जितना ज्ञान है उनका पार यदि कोई लगा सकता है तो साक्षात सरस्वती महारानी कर सकती है, इनके अतिरिक्त और किसी में इतना इतनी योग्यता नहीं है कि वो उनके ज्ञान का पार पा सके। तो उन मधुसूदन सरस्वती से पूछा गया कि ये जो भगवान ने कहा है वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानम्, तत्त्वविदस्तत्त्वम् यानी तत्व को जानने वाले महाज्ञानी आपके अतिरिक्त हमारे सामने और कोई नहीं है, तो कृपया आप बताइए कि वो तत्व जिसकी जिज्ञासा करने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है वो तत्व कौन है। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने बहुत ही सुंदर एक श्लोक उच्चारण किया है, आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत ही सुंदर श्लोक है, हमें उसको है ना श्रीमद् भागवतम महापुराण के मंगलाचरण में भी वो कहा जाता है, तो हम उसी श्लोक को अभी पढ़ेंगे जो संसार के सबसे महाज्ञानी मधुसूदन सरस्वती ने रचा और उस समय बताया उस विद्वानों की बहुत बड़ी सभा में उन्होंने बताया। वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांबर धारुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जानि। यदि आप वास्तव में परम तत्व के विषय में जानना चाहते हो तो मैं आपको परम तत्व के विषय में एकदम सही सही जो मैं मुझे पता है, इतने सारे ज्ञान तत्व ज्ञान को समझने के बाद मैंने परम तत्व के विषय में जो जो निर्णय लिया है वो सुनो। वंशी विभूषित करात नवनीरधाभा, उन्होंने अपने हाथों में बांसुरी पकड़ी हुई है और बहुत ही सुंदर अद्भुत सुंदरता है उनके अंगों में। पीतांबर धारण, वो पीतांबर धारण करते हैं। बिंब फलोद्धरोष्ठात, उनके अधर और ओष्ठ लाल लाल बिंबा फल की तरह चमकदार है। और पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा, उनका मुख पूर्ण चंद्रमा की भांति सुंदर, इतना सुंदर है कि उनको देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं। अरविंद नेत्रात, उनके नेत्र कमल की पंखड़ी के समान है। और उनका नाम क्या है? कृष्ण, कृष्णा परम, वही कृष्ण परम तत्व है। कृष्णा परम किमपि तत्वम अहम न जाने, और मैं आपको बता देता हूँ जितने भी शास्त्र हैं जितना भी ज्ञान है उनमें यदि कोई परम तत्व है तो वो कौन है? कृष्ण। कृष्णा परम किमपि तत्व अहम न जाने, इसके अतिरिक्त कोई और तत्व मैं नहीं जानता, अर्थात इसके अतिरिक्त और कोई परम तत्व हो नहीं सकता। अर्थात विद्वानों की सभा में ये फाइनल हुआ कि परम सत्य यदि कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। तो महाजन जो कहते हैं, यानी यहाँ पर क्या कहा, वदन्ति तत्त्वविदस, जो तत्वों को जानते हैं, तत्वों को जानने वालों के विषय में हमने पढ़ा सबसे पहले ब्रह्मा जी के विषय में। ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है, फिर भगवान स्वयं आकर कहने लगे अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया कि अद्वैत ज्ञान तत्व यदि कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। और इसके बाद हमने संसार के ज्ञानियों के विषय में बात की और उन्होंने एक स्वर में यह स्वीकार किया कि यदि कोई परम तत्व है तो भगवान श्री कृष्ण ही है। अब भगवान तो एक ही है, अब यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्मेति अर्थात ब्रह्म, परमात्मेति यानी परमात्मा, और भगवानेति यानी भगवान नाम शब्दते कहलाते। अभी वो है तो एक, वो दो नहीं हो सकते क्योंकि पहले ही कह दिया अद्वयम, लेकिन उसको तीन नाम से पुकार, शब्द यति मतलब तीन नामों से पुकारा जाता है। कौन कौन से नाम? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, शब्द यति। तो ये तीन अलग अलग नामों से उनको क्यों पुकारा जाता है, वजह क्या है? तो वजह क्या है, रियलाइजेशन के दो भेद से, जिसकी जितनी रियलाइजेशन है, जिसका जितना साक्षात्कार है, जिसने जितना भगवान के जितना करीब जाता है, उस हिसाब से उसने भगवान को जाना है और ये डिक्लेयर किया है कि वो भगवान है, परमात्मा है या ब्रह्म है। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी इन तीनों तत्वों की, यानी ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, शब्दते को बहुत ही सुंदर बताते हैं पहाड़ के रियलाइजेशन से। पहाड़, पर्वत को आप सब जानते हो ना, पर्वत जब बहुत दूर से हम उसको देखते हैं, पर्वत को, तो दूर से पर्वत कैसा दिखाई देता है? एक नीला नीला धुएं की तरह एक दृश्य दिखता है और हम जानते हैं कि वही पर्वत है। यदि कोई उसको पर्वत कहता है तो वो गलत नहीं है क्योंकि वो पर्वत ही है, लेकिन वो केवल उसकी रियलाइजेशन कितनी है कि वो क्या सोच रहा है कि पर्वत केवल एक नीला नीला दृश्य है जो धुएं जैसा, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन यदि वही पर्वत के बहुत बहुत करीब जाए, बहुत करीब जाए और उसे करीब से देखे, तो उसे कैसा लगेगा कि ये पर्वत मिट्टी का बना हुआ है और ये धुआं नहीं है, इसका एक अस्तित्व है ना। उसको जो करीब गया है तो उस पर्वत का उसका एक अस्तित्व दिखेगा, लेकिन फिर भी उसको ये नहीं पता चलेगा कि इस पर्वत के अंदर मिट्टी के अतिरिक्त और क्या है ना? लेकिन जो उस पर्वत के और भी निकट जाएगा, जो इस पर्वत पर चढ़ेगा, उसे दिखेगा कि इस पर्वत पे फूल भी हैं, इसके अंदर नदियां भी हैं, और इस पर्वत पर चढ़ते हैं तो यहाँ पर है ना घास भी लगी हुई है, पौधे भी हैं, तिनके भी हैं, ये भी हैं, फूल हैं, जंगली फूल है, और यहाँ ये रास्ता है, वो रास्ता, यानी कि उसका पूरा का पूरा ज्ञान किसको हुआ? जो बहुत करीब जाता है पर्वत के। उसी तरह भगवान का भी ज्ञान है, जो भगवान को बहुत दूर से रियलाइज करते हैं, बहुत दूर से, मतलब दूरी, फासला, देश की दूरी नहीं, ज्ञान की दूरी, जो अभी तक भगवान के विषय में सही तरह जान नहीं पाए हैं, वो भगवान को ब्रह्म कहते हैं। वास्तव में जो ब्रह्म साक्षात्कार है वो गलत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब भगवान ने कारण दर्शाई विष्णु के रूप में, जब वो कारण समुद्र में लेटते हैं और अपने रोम कूपों से ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, तो एक एक ब्रह्मांड में स्वयं साक्षात एक एक ब्रह्मांड के एक एक कण में भगवान होते हैं। तो ये ब्रह्म रियलाइजेशन है वो रोंग नहीं है, बिल्कुल सही है कि ब्रह्म जो है वो भगवान का एक स्वरूप है, तो क्योंकि वो कण कण में व्याप्त है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ही है और उसका कोई स्वरूप नहीं है, ये इनकम्प्लीट रियलाइजेशन है। उससे आगे जो बढ़ा हुआ है वो क्या सोचता है कि भगवान परमात्मा है। जो जिसका रियलाइजेशन, जिसका ज्ञान थोड़ा बढ़ जाता है, वो क्या सोचता है कि भगवान परमात्मा, परमात्मा माना हृदय में रहने वाले भगवान, वो जो सबके हृदय में विराजमान है, उसका एक स्वरूप है परंतु हृदय में है। तो ये जो हृदय में भगवान को मानते हैं, उनका रियलाइजेशन रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संसार की रचना करने के लिए नियोजित किया, तो ब्रह्मा जी ने समस्त संसार की रचना की और समस्त प्राणियों को, जो भगवान ने बोले थे, वो सारे प्राणियों को बना दिया और उनके अंदर आत्मा भी डालने के बाद भी वो समस्त प्राणी जो है सक्रिय नहीं थे, वो मूवमेंट नहीं कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण से जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने सबके अंदर आत्मा भी डाल दी है परंतु जीव के होते हुए भी सक्रिय नहीं है। तो फिर भगवान स्वयं अपने ही भगवान का एक अंश परमात्मा के रूप में संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान हो गया और वही परमात्मा, और उसी के कारण हम सब, हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है, परमात्मा के कारण आत्मा को पावर मिलता है और आत्मा सक्रिय होती है। तो ये परमात्मा रियलाइजेशन रॉन्ग नहीं है, परंतु अच्छा यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि एक ही परमात्मा, एक ही भगवान, वो इतने सारे जीव, अभी कितने सारे, 84 लाख तो केवल योनियां हैं, वो तो सिर्फ क्वालिटीज हैं, क्वांटिटी एक एक योनि में करोड़ों करोड़ जीव, तो इतने सारे जीवों के हृदय में एक ही परमात्मा कैसे? तो इसको हम यहाँ से इसे समझ सकते हैं कि यदि हम आसमान में एक ही सूर्य होता है, और यदि हम जब सूर्य एकदम आकाश में ऊपर आ जाता है और चमक रहा होता है, तो यहाँ संसार में फर्श पे हम कितनी भी कटोरी में पानी भर के रखेंगे, चाहे वो 1 करोड़ हो, 2 करोड़, सब में सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा ही दिखेगा, है ना? तो यदि एक सूर्य अपने प्रतिबिंब से प्याली में, एक कटोरी के पानी में आ सकता है, तो फिर भगवान जो कि परम सत्य है, क्या वो ऐसा नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। तो परमात्मा, भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तो परमात्मा का जो ये ज्ञान है, ये जो परमात्मा की रियलाइजेशन है, वो गलत नहीं है, परंतु इसमें थोड़ी सी कमी है। कमी क्या है कि वह उस भगवान के साक्षात्कार को अनुभव नहीं कराती। अब जिसका ज्ञान संपूर्ण हो जाता है, वो भगवान के विषय में सब कुछ जानता है। वो ये जानता है कि भगवान ब्रह्म भी है, जो भगवान कण कण में व्याप्त है, वही भगवान परमात्मा भी है, जो कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है। परंतु वह भगवान साक्षात स्वरूप के हैं। भगवान का एक स्वरूप है, वो द्विविज हैं, मोर पंख लगाते हैं, कमल पंखुड़ियों की जैसी उनकी आंखें, जैसे अभी हमने सुना कि वो इतने सुंदर हैं, वो कार्य क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं, और क्या करते हैं? भगवान है, कोई उनको भोजा ढोने की आवश्यकता नहीं है, मस्त हैं, इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, और उसी आनंद को प्रदर्शन, उसका प्रकटीकरण करने के लिए वो संसार की रचना करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को आनंद प्राप्त करने के लिए संसार की रचना करनी पड़ी, ऐसा नहीं है। भगवान आनंदमय है, भगवान आनंद का स्वरूप है, परंतु आनंद को प्रकट करने के लिए, उस आनंद को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे हम जब बहुत ज्यादा खुश होता है कोई मनुष्य, तो क्या करता है? नृत्य करता है। तो वो नृत्य इसलिए नहीं करता है कि उसको आनंद प्राप्त हो, वो नृत्य इसलिए करता है कि वो आनंदित है और आनंद का प्रदर्शन करना चाहता है। तो उसी तरह भगवान जो है वो संसार की रचना करते हैं कि वो आनंद का प्रकटीकरण करना चाहते हैं, और उस गौलोक वृंदावन धाम के आनंद को जब इस संसार में दिखाना चाहते हैं, तो वो अपने रियल स्वरूप में संसार में आते हैं। और ये भगवान का साक्षात, कि भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान की लीलाएं कैसी हैं, जो ये सब का जान लेता है, वो है भगवान रियल परम सत्य का भगवान साक्षात्कार, कि वास्तव में भगवान क्या है। महात्मा गण इस परम तत्व को अलग अलग तरीकों से समझाते हैं, और हमने भी काफी बार इसकी चर्चा की है, परंतु क्योंकि आज यह वास्तविक श्लोक है, तो उसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 2 में भगवान श्री कृष्ण ने जो पहला श्लोक उच्चारण किया था, कुतस्त्वाकर्षमालमिदं, उसकी व्याख्या करते हुए, जो श्री भगवान उवाच लिखा है उसकी व्याख्या करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने यही श्लोक कोट किया है। 1.2.11 वदन्ति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, यानी परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 श्रेणियों में कर सकता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है, ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त हैं। इन 3 दिव्य पक्षों की सूर्य के दृष्टांत से समझाया जा सकता है, क्योंकि इसके भी 3-3 पक्ष हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण दिया है कि सूर्य से भी हम भगवान के इन 3 चीजों को समझ सकते हैं, 3 रूपों को। जैसे सूर्य एक ही है, अद्वय है, 2 सूर्य कभी नहीं हो सकते। आपने किसी भी ब्रह्मांड में 2 सूर्य एक साथ चमकते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन उसके 3 अलग अलग पक्ष हैं, यथा धूप यानी प्रकाश, सूर्य की सतह, और सूर्य स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करते करने वाले हैं वह नाव सीखे हैं। अभी तक सिर्फ प्रकाश को ही जानते हैं कि धूप को ही समझते हैं कि वो सूर्य है, तो वो नए सीखे। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ और बड़ा हुआ है, जो देखता है कि भाई ये खाली धूप नहीं है, वो जो सामने चमक रहा है वह सूर्य है, तो थोड़ा कुछ आगे बढ़े हुए हैं। और जो सूर्य लोक में प्रवेश करता है वह उच्चतम ज्ञानी है, जो समझ जाता है कि सूर्य का एक लोक है, सूर्य का एक देवता है, सूर्य रथ पर बैठा होता है और अपने रथ पर सदैव चलता रहता है, वहां पर भी प्राणी रहते। तो जो सूर्य के अंदर प्रवेश करता है वह सूर्य के विषय में सब कुछ जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों गलत हैं, जो सूर्य को धूप ही समझते हैं या फिर सूर्य की जो सत्ता है उसी को सूर्य समझते हैं, लेकिन उनका ज्ञान इनकम्प्लीट है। इसी प्रकार हमने एक ट्रेन की भी मिसाल पढ़ी थी, जिसमें गांव में एक पहली बार ट्रेन आई थी और तीन लोगों को नियोजित किया गया था, तीन अकलमंदों को, कि जाओ देखो ट्रेन क्या होती है और आके साक्षात्कार बताओ। तो पहले ने आके बताया, क्योंकि उसने ट्रेन को बहुत दूर से देखा था, और आके बताया ट्रेन मतलब ज्योति, केवल प्रकाश है और कुछ नहीं है, क्योंकि दूर से देखा और आ गया। उसी तरह जो ब्रह्म को जानते हैं वो भी कहते हैं कि भगवान का मतलब होता है ज्योति, केवल प्रकाश और कुछ भगवान का अस्तित्व नहीं है, खाली ज्योति है। लेकिन जो दूसरा था वो थोड़ा और करीब गया, और जब ट्रेन आगे आई उसने देखा कि ट्रेन के अंदर डिब्बे भी हैं, ट्रेन के अंदर सीट्स भी हैं, तो आके बताया कि ट्रेन का मतलब ज्योति नहीं है, ट्रेन के अंदर डब्बे भी हैं और बैठने की जगह भी होती है। और जो तीसरा व्यक्ति गया था वो कुछ ज्यादा ही अकलमंद था, और ट्रेन के अंदर गया, उसके अंदर बैठा और पूरा ट्रेन का साक्षात्कार किया कि इसके अंदर डब्बे भी हैं, इसके अंदर किचन भी है, इसके अंदर एक ड्राइवर है जो इसको चला रहा है, और ट्रेन का रियल मकसद क्या है, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना। तो जो इसी तरह से जो भगवान को जानता है वो भगवान के विषय में सब कुछ जानता है, कि वो कैसा है, द्विभुज है, हाथों में बंसुरी पकड़ता है, और वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हवत समासित बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीया विशेष शोभम, के वो इतने सुंदर हैं कि करोड़ करोड़ कामदेव भी उनको देखकर लगाए जाते हैं। और साक्षात्कार यानी कि ये जो भगवान के विषय में इतना क्लियर वर्णन, ये केवल भागवतम महापुराणी हमें बता सकता है, केवल भागवतम और जो भागवत भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि देखो अर्जुन, यदि मुझे जानना है तो खबरदार जो किसी ज्ञानी ध्यानी की ओर गए, किसी ज्ञानी को ध्यानी को, उनको तो मैं दिखता नहीं हूँ, साफ साफ कह दिया 7.25 में, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानन्ति लोको माम अजन्माव्ययम्। वो जान ही नहीं सकते कि मैं अजन्मा हूँ, अव्ययम हूँ, मेरा जैसा और कोई नहीं है, मैं तो उनको उनके सामने प्रदर्शित होता ही नहीं हूँ। क्यों? योग माया समावृता, योग माया के द्वारा ढक जाता। तो अर्जुन ने पूछा होगा फिर पता कैसे चलेगा दूसरों को कि आप कैसे हो, आप कौन हो? तो भगवान ने बता दिया, अर्जुन फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, भक्त्यामाम अभिजानन्ति, जो भक्त है ना मेरे वही मुझे सही तरह से जान सकते, मैं उनके सामने प्रदर्शित हो जाता हूँ। तस्याम सुलभ सुलभ पात, उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ। और ब्रह्मा जी तो यहाँ तक कहते हैं वेदेषु दुर्लभ, वेदों के पढ़ने से दुर्लभ, बहुत कठिन है, मिलते नहीं है, अदुर्लभ आत्मभक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जरिए, उनके द्वारा भगवान बहुत ही आसानी से समझे जा सकते हैं। तो ये है ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्द थे। तो आइए अनुवाद पढ़ते हैं। परम सत्य को जानने वाले विद्वान, आध्यात्मवादी, तत्ववेत्ता इस अद्वैय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों ही है, यानी जानने के योग्य भी वही है और जानने वाले भी यही। भगवान जैसे बताते ना 15.15 में, वेदेश सर्वम अहमेव वेद्यम, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, वेदों को रचयिता भी मैं हूँ, और वेदों का वेदों के द्वारा जानने का लक्ष्य भी केवल मैं हूँ। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है, अतः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं, यानी कि उनके अंदर क्वालिटीज अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं। इसी को उपनिषदों में जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। यानी कि अद्वै नहीं है, अद्वै है मतलब द्वै नहीं है, उनके अंदर दो नहीं है, एक ही परम सत्य है। और उनको जो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है, वो क्या बोलते हैं? ब्रह्म बोलते हैं। और जो योगी जन है वो क्या बोलते हैं? अंतर्यामी परमात्मा। और जो भक्त हैं वो उनको क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान परम सत्य का अंतिम नाम है। अंतिम नाम है मतलब जो उसकी हाईएस्ट डेफिनेशन है ना, जो परम सत्य की सबसे हाई डेफिनेशन है, वो अंतिम नाम क्या है? भगवान। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है, आंशिक स्वरूप यानी उन्हीं भगवान में का एक अंश है, और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसे सूर्य देव की किरणें सूर्य के लिए हैं। निर्विशेष मतलब वो एक निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं कि एक ज्योति है, तो जिस तरह सूर्य की किरणें हैं वैसे ही भगवान का ब्रह्म साक्षात्कार है। कभी कभी उपर्युक्त दोनों संप्रदायों के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये तीन गुण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न होते हैं, कि इनमें से कोई गलत नहीं हो सकता, कोई गलत है ही नहीं, सब सही है, लेकिन सिर्फ भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है कि उसका ज्ञान इतना ही है कि उसको भगवान ज्योति के अतिरिक्त तो और कुछ दिखता ही नहीं है। जब वो बहुत ज्यादा ज्ञान, अब ज्ञान जब परिपक्व अवस्था में होता है तो वो क्या कहता है, ये मेरी बात नहीं है, कोई मनुष्य ऐसा कह दे ना आपको कि ज्ञान जब परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो वो कृष्ण को जान लेता है, तो कभी भी उस पर यकीन ना करना, बोलना हमें शास्त्र का प्रमाण दो। तो भगवान स्वयं कहते हैं 7.19 में, बहुनाम जन्म नामत्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, कि बहुनाम जन्म नामत्ते करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद जब वो ब्रह्म की उपासना कर लेते हैं, जब वो परमात्मा के विषय में जान लेते हैं, तब उन्हें ये ज्ञान हो जाता है वासुदेव सर्वम इति, कि वासुदेव का बेटा वासुदेव भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, समस्त कारणों के कारण है, और भगवान लिख कर दे दिया भगवत गीता में स महात्मा सुदुर्लभ, वास्तव में महात्मा वही है जो मेरी शरण में आता है, और जो ज्ञानी वही है। क्या बोला? बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी वही है जो डायरेक्ट से भगवान श्री कृष्ण को प्रपद्य, कृष्ण की शरण में आता है, और वो इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, सुदुर्लभ बहुत कठिन है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे रास्ते बहुत सारी मंजिलों को पार करके बहुत बहुत बहुनाम जन्म नामंते बहुत बहुत जन्मों तक हम ब्रह्म और परमात्मा के इस झमेले में उलझ उलझ के आज भगवान की कृपा हुई है कि हम कृष्ण को जान सके। और भगवान कहते हैं मेरे बच्चे तुमने मुझे जान लिया, तुम कोई साधारण हो नहीं सकते, तुम तो महात्मा हो और बहुत दुर्लभ हो। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि परम सत्य परम स्वतंत्र सर्वज्ञ तथा मोह से सर्वथा मुक्त है। क्या याद है ना आप सबको, जन्माद्यस्य यत्वयादितरतः चार्थेष्व भीक्यः स्वराट, चार्थेष्व वो सब कुछ सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं, अभिज्ञ वो सब कुछ जानते हैं, और स्वराट वो स्वतंत्र हैं और किसी पर आश्रित नहीं है, और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, वो उन अपने धाम में रहते हैं और वहां पर मोह का कोई भी स्थान नहीं है, मोह से सर्वथा मुक्त है। इस जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। इस जगत में ज्ञाता जीव आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है। अब इस संसार में क्या दिखता है कि जो जीव है यानी भगवान की पराशक्ति है वो क्या है, ज्ञाता है, और जो वो जिसका ज्ञान प्राप्त करता है वो क्या है, पदार्थ है। सर आप किसके विषय में ज्ञान हासिल करते हो, इस संसार के वस्तुओं के विषय में। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते इस संसार में ज्ञाता और ज्ञेय यानी जानने वाला और जानने का लक्ष्य दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक ही होते हैं। आगे श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं कि परम शक्तिमान की शक्तियां तीन प्रकार की हैं। जो भगवान है, जो परम शक्तिमान है, उनकी शक्तियां तीन प्रकार की हैं। कौन सी शक्तियां तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। अब जो शक्तियां हैं और शक्तिमान है उनमें कोई अंतर नहीं होता है, वो उसके अंदर ही होती है, लेकिन जो शक्तियां हैं उसके अंदर गुणों का भेद होता है। परम जगत तथा जीव आत्माएं एक ही परम शक्ति से बने हैं। अब ये जो संसार है, परम जगत, परम मतलब जो भगवान है, और आगे कहते हैं कि जगत तथा जीव आत्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं। ये संसार, जो संसार के अंदर जो कुछ भी है और जितने भी जीव आता है वो सब भगवान ने बनाई है। हमने पढ़ा था 7.4 and 5 में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इति यम्य भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। और भगवान ने आगे बताया अपरेयम इतस्त्वान्याम प्रकृति विद्धि में परा, ये सब मेरी अपरा प्रकृति है और मेरी एक परा प्रकृति भी है। जीव भूता महाबाहो येदम धारयते जगत, जो जीव है और इस संसार को धारण करती है। तो यहाँ पर उनके विषय में बता रहे हैं कि जगत तथा जीव आत्मा एक ही शक्ति से बने, लेकिन यह भौतिक जगत अपरा शक्ति है और जीव भौतिक जगत अपरा शक्ति है और जीव पराशक्ति के अपरा शक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है। अब क्योंकि यह संसार अपरा शक्ति है और जीव मजबूर है इस संसार में उस अपरा शक्ति यानी इस शरीर के अंदर रहने में, तो क्या ये शरीर अपरा प्रकृति है और जीव जरा सा हमारे हमारे शरीर में, देखिए बाल के अग्रभाग के जो 10,000वां हिस्सा है ना उतना जीव है, और बाकी सारा का सारा क्या मेटर है, सारा का सारा प्रकृति, ये जो परा अपरा शक्ति है ना वो, तो उस अपरा शक्ति के कारण वह जीव मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपरा शक्ति से संबंधित है। वो क्या सोचता है कि मैं भी इसी अपरा शक्ति का ही एक अंश हूं। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, यानी कि इस संसार में क्या है, वास्तव में आत्मा और शरीर में फर्क है, दोनों अलग अलग है। भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम के ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं है। परम के ज्ञाता यानी भगवान और परम को जानने का लक्ष्य यानी भगवान, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं होता है। और प्रत्येक वस्तु पूर्ण यानी परम होती है। जो सापेक्ष जगत, जो भगवान का धाम है, वहां पर ना शरीर और आत्मा का भेद होता है और ना ही ज्ञेय और ज्ञाता का कोई भेद होता है। वहां पर संपूर्ण होता है, जो कुछ है पूर्ण ज्ञान होता है। और यह पूर्ण ज्ञान क्या है, अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना, कि वो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही क्या है, अद्वैत ज्ञान तत्व है, वही परम सत्य है। और आज हमने यही पढ़ा कि वास्तव में परम सत्य है कौन, जिसकी हमें जिज्ञासा करनी है। अब ये तो पता चल गया कि वो परम सत्य है कृष्ण, लेकिन वो परम तत्व को प्राप्त कैसे किया जाए, अभी तो खाली पता चला है, इसको प्राप्त कैसे किया जाए, तो इसका उत्तर अगले श्लोक में देंगे। कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।